नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
से ज्यादा मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर मेरी राहों में थी मुश्किल मैंने पाई है मंजिल यीशु से। से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर मेरी राहों में थी मुश्किल मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा
कितना
अच्छा है तू मसीह। मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, इसके पूर्व कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब परमेश्वर की निकटता में आएं और अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और आज के अध्ययन के लिए आशीष मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन करें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक की आत्मिक आंखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय और विचारों को खोल दें ताकि जब हम आपके वचन को सुने तो आपका वचन हमारे हृदयों से बोलने और बातचीत करने पाए। पिता परमेश्वर, आप हमें से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के हृदय के विचारों को जानते हैं, वेदनाओं को जानते हैं, तकलीफ और कष्टों को जानते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आज अपने वचन से हम सबको चंगाई प्रदान करें, हमसे स्पर्श करें ताकि प्रभु हम आपके नाम में बलवंत किए जाएं। आज की इस अध्ययन के समय हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए भी जो अपने जीवन में दुखी और निराश हैं, चिंता और परेशानी में हैं। पिताजी, आप उनकी भी सुधि लीजिए ताकि वे भी आप में बलवंत किए जाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, पिछले दो अध्ययनों में हम देख रहे थे कि परमेश्वर द्वारा यीशु का निर्धारित समय आ गया था, अतः यीशु एकांतवास से निकलकर फसह के पर्व में यरूशलेम को आता है जहां धर्म गुरु षड्यंत्र रच चुके थे कि उसे घात करेंगे। और महासभा में काइफा महायाजक ने भी घोषणा कर दी कि राष्ट्र के लिए एक का अर्थात यीशु का मरना आवश्यक है। मित्रों, ध्यान दें कि लाजर को मृतकों में से जीवित करने के कारण एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे थी और भविष्यवाणी की पूर्ति के निमित्त यीशु गधे के बच्चे पर सवार होकर मंदिर में प्रवेश करता है। उसकी सांसारिक सेवा समाप्त हो चुकी है, अतः वह गेहूं के दाने के उदाहरण द्वारा अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा करता है। जगत की ज्योति उनके मध्य थी परंतु उन्होंने उसे देखा नहीं क्योंकि वे अंधे थे, उनके मन कठोर थे। यीशु का यह आगमन संसार का न्याय करने नहीं, उद्धार करने के लिए था। अब हम 13 अध्याय में आगे देखेंगे कि यीशु अपने शिष्यों के पांव धोता है और उनके साथ फसह का भोज खाता है जो उसके स्मारक बन गया, उसके बलिदान का प्रतीक बन गया। आइए हम देखें, यीशु अपने शिष्यों के पांव धोता है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के चौथे भाग में प्रवेश कर रहे हैं। हमने सबसे पहले अमुख देखा था जो अध्याय 1 के 18 पद थे। दूसरा भाग था प्रस्तावना अध्याय 1 के शेष पद। तीसरा भाग अध्याय 2 से 12 में हमने यीशु के कार्य और उपदेश देखे। अब हम देखेंगे अपने गवाहों के लिए यीशु की गवाही अध्याय 13 से 17 में। इस सुसमाचार के विभाजन की एक और विधि है, पहले 12 अध्यायों में विषय है ज्योति, उनमें उसकी मानवीय सेवा का उल्लेख है और उसके ज्योति होने का अंगीकार है। अध्याय 13 से 17 तक का विषय है प्रेम और अध्याय 18 से 21 जीवन के विषय चर्चा करते हैं। वह हमें जीवन देने आया और वह स्वयं जीवन है, उसकी मृत्यु से हमें जीवन मिलता है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु ने 4 मुख्य उपदेश दिए थे। इनमें से 3 उपदेश हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ चुके हैं। पर्वतीय उपदेश जो मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 7 में है, गुप्त बातों को प्रकट करने के दृष्टांत मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय, स्वर्ग के राज्य की चर्चा जैतून पर्वत का उपदेश मत्ती रचित सुसमाचार 24 और 25 अध्याय में, और अब चौथा उपदेश जो यूहन्ना 13 अध्याय से 17 में विहित है। यह हमारे प्रभु का सबसे उत्तम और सबसे लंबा उपदेश है। यह हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यीशु ने अपने शिष्यों को अभिनव सत्यों की जानकारी दी। वह हमारे लिए उसके प्रेम का एक उदाहरण देते हैं कि हमें कैसे मसीही जीवन जीना है। उसके प्रावधानों का उसके और उसके अपनों के बीच संबंधों का उल्लेख करता है। अब क्योंकि वह क्रूस की ओर अग्रसर है, इसलिए उसके पास न तो फरीसियों के लिए, न धर्मगुरुओं के लिए और न ही रोमी राज्य के लिए कोई संदेश है। यह संदेश केवल उसके अपनों के लिए है। यीशु अपने शिष्यों के पांव धोते हैं। यह एक बड़ी असामान्य घटना है। हम इसे अनेक बार सुन चुके हैं, इसलिए हमें यह विचित्र नहीं लगता है। मेरे मित्रों, मसीह यीशु स्वर्ग की महिमा को त्याग कर इस पृथ्वी पर आया और एक दास की भूमिका अपनाई। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि मरियम ने यीशु के पांव इत्र से धोए थे। यहाँ पर वह शिष्यों के पांव धो रहा है। कैसा अंतर दिखाई देता है। उद्धारकर्ता यीशु इस संसार में चलकर भी अशुद्ध नहीं हुआ था, वह पवित्र एवं शुद्ध था। पांव मनुष्य की यात्रा का वर्णन करते हैं और यीशु के पांव इत्र से धोना हमारे प्रभु के चलने की मनमोहक सुगंध का वर्णन करते हैं। शिष्यों को पांव धोने की आवश्यकता थी, यीशु ने उनके पांव पानी से धोए, लहू से नहीं। यह महत्वपूर्ण बात है और अनेक जन मसीह के लहू में धोए जाने की बात करते हैं। इस यीशु का अपमान है। परमेश्वर पुत्र मसीह यीशु हमें अतीत के, वर्तमान के और भविष्य के सब पापों से धो चुका है। केवल एक ही बलिदान है। हम इब्रानियों के पत्री 10 अध्याय उसके 14 पद में पढ़ते हैं, उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। परंतु मेरे मित्रों, हमें अपनी तीर्थ यात्रा की अशुद्धियों को धोना है। हम इस संसार में चलते हैं तो अशुद्ध होते हैं, अतः हमें पांव धोने की आवश्यकता है। इसी कारण प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पांव धोए। यीशु द्वारा शिष्यों के पांव धोने के 3 कारण दिए गए हैं जिन्हें हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 1-3 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। और जब शैतान शमौन का पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने शिष्यों के पांव धोए क्योंकि वह जानता था कि इस संसार से कूच करने का उसका समय आ गया था। अब उसकी सेवा स्वर्ग से होगी। उसने अपनों के साथ पहचान बनाई और वह आज भी अपने शिष्यों के पांव धोता है क्योंकि वह इस पापी संसार में विरोधी संसार से जाने वाला था, इसलिए उसने अपने शिष्यों के पांव धोए थे। दूसरा कारण था कि वह अपनों से प्रेम करता था। वह उनसे अनंत प्रेम करता था। वह अपनों के उद्धार के लिए मर गया और वह उन्हें उद्धार में अवस्थित रखने के लिए जीवित है। वह हमारा अद्भुत उद्धार करता है जो हमसे अनंत प्रेम करता है। हमसे प्रेम करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। मेरे मित्रों, हम उसे प्रेम करने से भी नहीं रोक सकते हैं। तीसरा कारण, वहां एक अनावश्यक व्यक्ति था शैतान, जिसने यहूदा इस्करियोती के मन में यीशु को धोखा देने का विचार डाला। जब भी शैतान मसीही सेवा में आ जाता है, तब हमें प्रभु द्वारा शोधन की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम प्रभु के साथ सहभागिता में रहें। यह फसा का समय था, यह प्रभु भोज नहीं था। यहूना प्रभु भोज का उल्लेख नहीं करता है, क्योंकि जब यहूना सुसमाचार वृतांत लिख रहा था, तब संभवतः विश्वासी प्रभु भोज को अनुष्ठान बना चुके थे और मसीह पर से उनका ध्यान हटता जा रहा था। परमेश्वर के वचन के ज्ञान के बिना प्रभु भोज में आशीष नहीं है। मेरे मित्र, मेरे एक शिक्षक ने कहा था, पेट में रोटी और मन में यीशु। आपके पेट में रोटी सदा नहीं रहेगी, परंतु मन में यीशु सदैव वास करेगा। मेरे विचार में यही कारण है कि यहूना प्रभु भोज का उल्लेख नहीं करता है। अब हम आगे पढ़ते हैं यहूना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 3 पद में। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। मेरे मित्रों, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि वह पिता के पास जा रहा है, इस कारण उसने ऐसा किया। हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 4 और 5 पद में लिखा है, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह दास का रूप था। यीशु ने दास का रूप धारण क्यों किया? निर्गमन की पुस्तक 21 अध्याय में आजीवन दासत्व की व्याख्या है। यदि कोई इब्रानी दास अपने स्वामी के कुटुंब में विवाह करके परिवार बसा लेता है और अपने मुक्ति के वर्ष उस प्रेम के कारण जाना नहीं चाहता, तो उसका स्वामी द्वार पर उसका कान छेद कर उसे आजीवन दासत्व में रख सकता था। यह दासत्व उसकी इच्छा से था। यीशु ने भी प्रेम के कारण क्रूस पर अपनी जान दी कि हमें उद्धार प्राप्त हो। उसने स्वर्ग छोड़कर दास का रूप धारण किया कि हम उसके साथ संबंध बना पाएं, क्योंकि वह हमसे अत्यधिक प्रेम करता है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 6 और 7 पद में पढ़ते हैं, जब वह शमौन पत्रस के पास आया तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। कुछ लोगों का कहना है कि इसे एक संस्कार का रूप देकर हमें भी करना चाहिए। यदि इसका आत्मिक अर्थ बना रहे तो इसमें कोई समस्या नहीं है। कुछ का कहना है कि यह दीनता का पाठ है। अच्छी बात है, पत्रस भी यही सोच रहा था, परंतु प्रभु ने उससे कहा, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। हम यूहन्ना 13 अध्याय के 8 पद में पढ़ते हैं, पत्रस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। यीशु के कहने का अर्थ क्या था? यही कि इस शोधन के बिना उसकी संगति संभव नहीं है। फसा का पर्व उसकी मृत्यु का प्रतीक था। वह फसा के भोज से उठा, अर्थात वह फिर जी उठा और स्वर्ग में चढ़ गया। वह अंगोछा बांधकर शिष्यों के पांव धोने लगा। वह हमसे कहता है, यदि मैं तुम्हें शुद्ध न करूं तो मेरे साथ तुम्हारा कुछ भी साझा नहीं। मेरे मित्र, शोधन बिना उसके साथ सहभागिता संभव नहीं है। मसीह आज हमें कैसे धोता है? भजन संहिता 119 उसके 9 पद में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 3 पद में हम पढ़ते हैं, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 25 और 26 पद में लिखा है, मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। मित्रों, यह परमेश्वर का वचन ही है जो विश्वासी को शुद्ध रखेगा। और जब हम पाप करें तब 1 यूहन्ना 1 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बहुत लोग पाप को गंभीरता से नहीं लेते हैं। मेरे मित्रों, पाँव हमारे चलने को दर्शाते हैं। जब हम उसकी आज्ञा नहीं मानते, तब हम उसके मार्ग में नहीं चलते हैं, अर्थात यह पाप है जिसका स्वीकार करना आवश्यक है। यूहन्ना 13 उसके 9 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, शमौन पत्रस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यहां पर ध्यान दीजिए, पहले तो पत्रस ने अपने पाँव हटा लिए, परंतु जब यीशु ने कहा कि इसके बिना उसके साथ सहभागिता नहीं, तब उसने अपने हाथ और अपना सिर भी आगे कर दिया। पत्रस पूरी सहभागिता चाहता था। हम यूहन्ना 13 उसके 10 पद में पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो परंतु सब के सब नहीं। जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। उस युग में स्नान के लिए सार्वजनिक स्नानागृह थे। नहाने के बाद जब वे घर लौटते थे, तब मार्ग में धूल और गंदगी पाँव में लगती थी। उस युग में सड़कों पर कूड़ा भी पड़ा रहता था, जैसा कि आज बहुत जगह पर पाए जाते हैं। अतः घर आकर उन्हें पाँव धोने पड़ते थे। यीशु को ग्रहण करके हम नहा चुके हैं, परंतु इस संसार की गंदगी हमारे पाँव में लगती है। अवज्ञा, पाप, ऐसा कोई विश्वासी नहीं है जो प्रतिदिन अशुद्ध न हो। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे मित्रों, अपने पाँव धोने से पहले हमें अपने पाप स्वीकार करने हैं। सबसे कठिन काम यही है। निरुत्साह, अनास्था, प्रेम की कमी आदि सब परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, परंतु स्वीकार करने पर वह हमें क्षमा करता है। अपने पाँव उद्धारकर्ता के हाथों में देना होगा, वही हमें चलाएगा। हम अपनी इच्छा से बार बार गंदगी में नहीं जा पाएंगे। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 11 पद में पढ़ते हैं, वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। मेरे मित्रों, यीशु यहूदा को जानता था कि उसका नया जन्म नहीं हुआ है, वह उसे पकड़वाएगा। इस कारण उसने कहा कि सब के सब शुद्ध नहीं है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 12 से 17 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। प्रिय मित्र, यदि आपको अपने जीवन में आज आनंद चाहिए, तो उसके पास जाकर अंगीकार करें। हमारा मस्तिष्क शिक्षाओं से भरा होगा, परंतु हमारे पाँव से दुर्गंध आती है। यही कारण है कि हम मसीह को अनेक मनुष्यों में नहीं पहुंचा पाते हैं। मेरे मित्र, यीशु का यह निर्देश है कि उसकी नाई उसके शिष्य भी एक दूसरे के पाँव धोएं। इसका क्या अर्थ है? पौलुस गलतियों को लिखता है कि यह कैसे किया जाए। गलतियों के पत्री 6 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। मेरे मित्र, परीक्षा में गिरने वाले भाई या बहन की आलोचना करना या न्याय करना उसके पांव धोना नहीं है। अपने भाई के पांव धोने से पहले हमें महिमा के प्रभु को अपने पांव धोने देना होगा। हमें हर बार उसके पास आकर शुद्ध होना होगा। भजन संहिता 139:23-24 में लिखा है, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और आनंद के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे प्रिय मित्र, हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो पाप के बिना एक भी दिन निकाल सकता है। यही हमें प्रभु के पास लाना है कि शुद्ध किए जाएं। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा धोए जाते हैं। हम अपने पांव उसके हाथों में रख देते हैं, अर्थात उसे संपूर्ण समर्पण कर देते हैं। इस प्रकार हम प्रभु यीशु की सहभागिता प्राप्त करते हैं। मेरे मित्रों, उसकी सहभागिता के बिना एक दिन भी न जाने दें। उसके साथ सहभागिता को तोड़ने के लिए पाप बीच में न आने दें। मेरे मित्रों, यह क्या ही गंभीर बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते हैं जब तक कि हम अपने पांव न धो लें, अर्थात इस संसार में रहते हुए अपने जीवन की उन गंदगियों को हम नहीं धोते हैं तो हम परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं रख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है कि वह पवित्र है, और वचन यह भी कहता है कि यदि हम उसके साथ सहभागिता रखना चाहते हैं तो हमें भी पवित्र होने की आवश्यकता है। प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम उसके पास आए ताकि हम अपने पापों से शुद्ध किए जाएं और अपने जीवन में उसे जगह दे पाएं। मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आज परमेश्वर आपके जीवन को भी शुद्ध करना चाहते हैं, आपके पापों से आपको मुक्ति देना चाहते हैं। क्या आज आप प्रभु के पास आने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो आज ही प्रभु को अपना जीवन दे दें, क्योंकि वह आपसे प्यार करता है, वह आपको शुद्ध करना चाहता है, आपको पवित्र करना चाहता है, आपको छुटकारा देना चाहता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
रिमझिम रिमझिम प्यार की बरखा क्रूस से बरसी है आज। रिमझिम रिमझिम प्यार की बरखा क्रूस से बरसी है आज। खून में नहाए रहम और माफी की मेघा बरसी है आज, मेघा बरसी है आज। की बरखा क्रूस से बरसी है।